मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 7 अप्रैल 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की लाइफ मैनेजमेंट में मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, हालांकि सीधे उसका शीर्षक सुख की चाहत या दुख से छुटकारा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस विषय का संबंध कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस विषय से ही है। और उसका रीजन यह है कि कल जो मुझे मेल मिले हैं, उन मेल्स को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ और ऐसे इश्यूज हैं, यदि उन पर भी बात कर ली जाए तो शायद जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं वो और अधिक पुख्ता हो जाएगी या दिमाग में थोड़ी बहुत और जो धुंध छाई हुई है वो शायद छंट जाएगी। तो दोस्तों, मैं खासकर दो पॉइंट्स को लेकर आज आपसे चर्चा करूंगा। और पहला ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, मतलब बिल्कुल असहाय, मतलब दुख इतना बड़ा होता है या यूं कह लीजिए कि संकट इतना गहरा होता है या समस्या इतनी जटिल होती है कि हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और सच ये भी होता भी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? देखिए, ज्यादातर समस्याएं तो या ऐसी ही होती हैं जिन्हें सुलझाया जा सकता है। और सामान्य रूप से कहा भी जाता है कि यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो सच यह है कि वो समस्या ही नहीं है। फिलोसफिकल लेवल पर यह सही भी है और व्यावहारिक स्तर पर यह गलत भी है। उदाहरण के तौर पर मित्रों, मान लीजिए कि मेरे पिता हैं और वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आईसीयू में हैं या वेंटिलेटर पर हैं और डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, संभावना केवल 5% ही है, लेकिन फिर भी उनसे लगाव इस तरह का है कि लगता है कि शायद ये 5% ही हो सकता है आगे चलकर 100% में तब्दील हो जाए। और उस भरोसे हम लगातार उनको वेंटिलेटर पर रखते हैं, आईसीयू में रखते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं। अब सवाल ये है कि एक छोटी सी उम्मीद जो 5% को 100% बदलने से जुड़ी हुई है, जबकि डॉक्टर्स को ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब आप देखें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल हेल्पलेस ही हैं। जो करना है वो डॉक्टर कर सकते हैं और डॉक्टर जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। डॉक्टर भी आप देखेंगे कि एक समय के बाद यही कहते हैं कि अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, दुआओं का ही असर हो सकता है, दवाओं को तो जितना करना था वो कर चुके हैं। ऐसी स्थितियां जनरली आते हैं। मित्रों, अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं है तो वह समस्या ही नहीं है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे पिता की जो यह स्थिति है क्या वास्तव में एक समस्या है, क्योंकि इसका समाधान नहीं है, तो मैं क्या करता हूं? दोस्तों, इस समय जरूरत पड़ती है सत्य को स्वीकार करने की, सत्य को अस्वीकार करने की। सत्य क्या है? सत्य बिछुड़ना है, अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। हम सब एक ऐसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं जिसमें पहले से बहुत लोग बैठे हुए हैं, हम उनके बगल में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही अगला स्टेशन आता है उसमें से कुछ लोग उतर जाते हैं और फिर कुछ नए लोग चढ़ जाते हैं और हमारी यात्रा जारी रहती है। और फिर एक स्टेशन ऐसा आता है जिसमें हम खुद भी उतर जाते हैं। तो जीवन का सफर तो एक इसी तरह का सफर है और नो डाउट कि यह जीवन का सच है। अक्सर लोग सच को कड़वा कहते हैं, मैं सच को कड़वा नहीं कहता हूं। सच पूछे तो सच एक ऐसा फल है जिसका कोई स्वाद ही नहीं होता, वो पानी की तरह है जो जरूरी है, जो हमारी प्यास बुझाता है अगर हम उसे स्वीकार कर ले तो, लेकिन उसका अपना कोई स्वाद नहीं होता, न तो वो मीठा होता है और न कड़वा होता है। सच तो यह है कि सच अपने आप में एक स्वाद है, उसमें इतनी बड़ी ताकत होती है, इतना ज्यादा आप कह लीजिए कि वह शक्तिशाली होता है, वह इतना प्रबल होता है कि अगर मेरी आंखों में अब मेरे सामने जो मेरे पिता के हालात के जो सत्य हैं उसे मैं स्वीकार कर सकूं तो आप देखेंगे कि मेरी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, गीता में यही कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, केवल कर्म पर आपका मेरा सबका अधिकार है, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो जिस पर मेरा अधिकार ही नहीं है उस पर मैं क्या करूं, लेकिन वहां तो अधिकार नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पेस है जहां मेरा अधिकार है, और वह है मेरी मानसिकता, कि कैसे मैं अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सकता हूं, अपने आप को मैं पुख्ता कर सकता हूं। और यह पुख्ता होना केवल तभी संभव होगा जब सत्य को स्वीकार करने की ताकत मेरी आंखों में आ जाए। ठीक है, एक चरण है, मैं अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूं, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि जब मैं कर्तव्य से चूकूंगा तो याद रखिए फिर मुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा कि शायद ऐसा कर लिया होता तो ये हो गया होता, लेकिन कर लिया होता ना, किया तो नहीं। तो वो जो मौका मिल जाता है दिमाग को आपके अंदर एक प्रायश्चित और पछतावे का एक इंजेक्शन लगाने का, जहरीला इंजेक्शन लगाने का, आप वो मौका मत दीजिए। कर्तव्य कर्म करने का एक जबरदस्त सुख होता है, और सच पूछे तो इसका जो सुख होता है वो फल की प्राप्ति के सुख से भी कई गुना बड़ा होता है। आप बस यही कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना, सेवा, जो भी संभव है वो सब कुछ, और बस फिर जो बच जाता है वो अपने दिमाग की मजबूती। दोस्तों, इस जीवन में इतनी बड़ी ताकत है, जीवन बिल्कुल ये कह लीजिए कि रबर की तरह है। रबर इस मायने में कि जहां खींचेंगे खींच जाएगा, ढालेंगे ढल जाएगा, मोड़ेंगे मुड़ जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है, हमें अभी लगता है कि सब कुछ शून्य हो जाएगा। जैसे मुझे अगर मैं मान ये कहूं कि मेरे पिता नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, तो मुझे लगेगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, जीवन शून्य हो जाएगा, जीना कैसे होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं जीऊंगा किसके लिए, करूंगा किसके लिए, फिर जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। इस तरह के विचार मन में आते हैं क्योंकि ये इमोशनल वेव्स हैं, ये भावनात्मक तरंगे हैं। तो ये भावनात्मक तरंगें हमें दोलित करती रहती है, हमारे स्थायीपन को, ठोसपन को तरल पदार्थ में बदल देती हैं, हमें विचलित करती रहती हैं। लेकिन फिर से मैं जीवन के इस अगर सत्य को स्वीकार कर लेता हूं कि नहीं, जीवन में अपने आप को ही ढाल लेने की बहुत बड़ी ताकत है, और ये जीवन ढलता आ रहा है। मैं अगर अपने अभी तक के जीवन का मूल्यांकन करूं तो मैं देखूंगा कि कोई भी स्थिति एक जैसी रही ही नहीं है, और जीवन उसके अनुकूल अपने को ढालता रहा है। ठीक है, आगे जो स्थिति आएगी मैं अपने अनुकूल उसको अपने को उसके अनुकूल ढाल लूंगा, और ढलता है, ढालना नहीं पड़ता, ढलता है। हाँ, एक काम हमें करना पड़ता है कि जीवन को मौका देना पड़ता है। अगर हम जीवन को बिल्कुल रिजिड बना लेंगे तब फिर तो जीवन ढलना बंद कर देगा, क्योंकि ढलता तो वही है जो लिक्विफाइड होता है, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, जिसमें लोच होगा वही ढलेगा, जिसमें बहाव होगा वही ढलेगा। अगर मैं इसको बहुत ही ठोस बना लूंगा, सॉलिड बना लूंगा, आयरन बना लूंगा तो ढलेगा नहीं। तो दूसरी कोशिश हम ये कर सकते हैं कि अपने जीवन को मौका दें, अवसर उपलब्ध कराएं। मुझे नहीं लगता मित्रों कि इसके सिवाय ऐसे संकटों से, ऐसे दुखद की घड़ी, दुखद घड़ियों का मुकाबला करने के लिए दूसरा कोई उपाय हो सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है दोस्तों, के मित्र ने पूछा है कि मैंने कल कहा था आप लोगों से कि हमें अपने आप को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि वातावरण का प्रभाव ही हम पर न पड़े, और सच पूछे तो अभी जो मैंने बात की है उसका भी कहीं न कहीं संबंध इसी से है। वातावरण का प्रभाव न पड़े से क्या, मैं आपको फ्रेंड्स एक तो उदाहरण देना चाहूंगा, शायद उससे आपके बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। पिछले साल की बात है, अगस्त सितंबर की बात रही, वो सितंबर की बात है शायद, हम लोग सब गोवा गए थे। तो एयरपोर्ट पर जब हम लोग उतर करके बाहर आए तो एयरपोर्ट पर भयानक भीड़, लोगों की भीड़ तो थी ही, उससे ज्यादा गाड़ियों की भीड़ थी, और चो चलो पच्चो, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ और इतना ज्यादा शोरगुल कि दो लोग आपस में भी अगर बात कर रहे हो तो इत्मीनान से बात नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में इरिटेशन स्वाभाविक है ना, झुंझलाहट होती है, चिड़चिड़ाहट आती है कि यार कहां आ गए, हम तो सोचे थे कि इत्मीनान से रहेंगे और ये तो मूड़ मुड़ाते ओले पड़े, मतलब अभी तो एयरपोर्ट पर उतरे ही हैं और पता लगा कि ये सब हल्ला गुल्ला शुरू हो गया है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। दोस्तों, सिर्फ एक जो मैंने किया, मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अव्यावहारिक बातें न बताऊं। मैंने कुल मिलाकर के किया, हालांकि आप सब हंसेंगे कि ऐसा भी किया जा सकता है, हाँ मैं तो कर लेता हूं, और वो है दिमाग को स्विच ऑफ कर देना। जैसे आपके घर पर किसी कमरे में बिजली के स्विच होते हैं ना, तो आप स्विच ऑन कर देते हैं, लाइट जल जाती है। अब लाइट को बुझाना है तो अब आप क्या करेंगे, ट्यूबलाइट के साथ थोड़ी छेड़खानी करते हैं ना, ट्यूबलाइट पर आप कपड़ा और पर्दा डालते हैं, आप स्विच ऑफ कर देते हैं उसी स्विच को जिससे आपने ऑन किया था, ट्यूबलाइट ऑफ हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। दोस्तों ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जाता है। अब करके देखिए, हाँ शुरू में थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास की जरूरत होती है, यानी कि उसके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए, उस पर्टिकुलर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, और यहां फिर से आप एक सत्य को लेकर आइए। वो कौन सा सत्य होगा कि आप हल्ला गुल्ला में शामिल नहीं है, और ये हल्ला गुल्ला भी थम जाएगा, या फिर ये हल्ला गुल्ला ही यहां का सच है, यहां ऐसा ही होता है। अब जब ऐसा ही होता है तो आपके चाहने से तो कुछ और नहीं हो जाएगा। अगर मैं तालाब में उतरा हूं और मेरे बाल भीग गए हैं तो मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए ना कि मेरे बाल को तालाब ने भिगो दिया, वहां तो ऐसा ही होता है। एयरपोर्ट है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस तरह से आप आए हैं वैसे दूसरे लोग आए हैं, फर्क इतना ही है कि आप थोड़ा सा शांति के लिए आए हैं, दूसरे लोग मस्ती करने के लिए आए, हल्ला गुल्ला मचाने के लिए आए हैं, तो वो वैसा कर रहे हैं, आप अपना कर लीजिए। ये फिर से जीवन का एक दूसरा सत्य होता है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी बात होती है वह यह है कि जब हम जीवन के सत्य को जान लेते हैं तो उसे स्वीकार करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जैसे ही उसे स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है हमारी मानसिक मजबूती बढ़ जाती है, और फिर बाहरी चीजों का उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, या यूं कह लीजिए कि हम उस प्रभाव को अपने ऊपर पड़ने नहीं देते हैं। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि थोड़ी सी गंभीर किस्म की जरूर बातें हुई हैं, लेकिन चूंकि पिछले 3 सत्रों में भी हम लोग लगभग इसी इश्यू पर बात करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी मैच्योरिटी आप में आ चुकी होगी कि इसे समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज शुक्रवार है और शनिवार और रविवार को मैं आप सभी अपने प्रिय मित्रों को मिस करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, सोमवार को फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत चाहूंगा, ये 2 दिन आपके बहुत सुखद हों, इन शुभकामनाओं के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।